का भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। आओ भर लो झोलिया, भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है।
तलाश करता है एक वैज्ञानिक, अध्ययन के दौरान एक ऐसे मैप को, एक ऐसे चित्र को पाता है जिसमें खजाना कहाँ है वो लिखा था। वो मानचित्र लेकर वो बहुत खुश होता है कि अब उसे वो खजाना मिलने वाला है जो आज तक किसी को न मिला और उसी खजाने की तलाश में वो निकल पड़ता है। कहानी शायद काल्पनिक है, जाता है, अंधेरी रात है और एक घना जंगल सामने है और उसे एक शेर मिलता है और उस शेर से कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं खजाने की तलाश में जा रहा हूं, तुम यदि साथ रहो तो कोई खतरा नहीं। शेर मान लेता है और वो दोनों घने जंगल से गुजरते हैं, क्योंकि शेर साथ है तो भय नहीं। और जब जंगल पार होता है, एक बहुत बड़ा पर्वत आता है, उन्हें एक बाज पक्षी मिलता है। वो वैज्ञानिक उस बाज पक्षी से कहता है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? क्योंकि तुम्हारी नजर बहुत पैनी है, तुम दूर दूर से देख सकते हो, दूर दूर का देख सकते हो, कहीं कोई संकट तो नहीं, क्योंकि हम खजाने की तलाश में जा रहे हैं। तो वो भी मान जाता है और तीनों निकल पड़ते हैं। दूर दूर की सूचनाओं को वो बाज पक्षी बताता है और सुविधा पूर्वक आसानी से वो लोग उस पर्वत को भी पार कर जाते हैं। और फिर एक खाई आती है और उनकी मुलाकात एक भेड़ से होती है और उस भेड़ से निवेदन करते हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? वो भेड़ कहता है, हाँ बिल्कुल। और उस खाई में, उस वादियों में ठंडी ठंडी हवाओं से वो भेड़ उनकी रक्षा करता है, उसको चिपक के वो सो जाते हैं रात में। वहां से निकलते हैं, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान आता है और वहां एक ऊंट होता है। वो लोग कहते हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे? हम खजाने की तलाश में जा रहे हैं। वो कहता है, बिल्कुल। और वो सब के सब उसके पीठ पर बैठ जाते हैं और डोलते हुए वो रेगिस्तान भी पार कर जाते हैं। और जैसे कि मैप में होता है, वो ये निष्कर्ष निकालते हैं, हम सही जा रहे हैं। वो खजाना एक दुर्गम चोटी पर है और उसके पहले एक समुन्दर है और समुन्दर को पार कर कर ही उस दुर्गम चोटी पर पहुंचा जाएगा, एक टापू पर। और उन्हें वो समुन्दर दिखाई देता है और समुन्दर में एक कछुआ, उसको कहते हैं, क्या तुम हमें पार करोगे? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। और एक एक करके सबको वो पार कर देता है और जैसे ही उस टापू पर पहुंचते खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि मैप में जैसा था वैसे आ गए। और मैप में था वहां एक उल्लू मिलेगा, वो बताएगा खजाना कहाँ है। और वो उल्लू कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही पहुंचे हो, बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आप खजाना तक पहुंच गए। वो वैज्ञानिक कहता है, पर खजाना है कहाँ? वो कहता है, तो आप लोगों ने खजाना तो पा लिया, अब और क्या चाहिए खजाना? वो कहता है, पर है कहाँ? वो कहता है, जो ये तुम लोग साथ आए और ये जो तुम्हारी मैत्री थी और जो एक दूसरे की मदद की और जो साहस दिखाया और जो जो धैर्य तुमने दिखाया, जो पराक्रम तुमने दिखाया, जो सहयोग एक दूसरे को दिया, क्या यही खजाना नहीं है? यही तो खजाना है। और जो शक्तियां तुम में आई, जो गुण तुम में आ गए, क्या ये शक्तियां नहीं, ये खजाना नहीं है? और जो अब तुमको ज्ञान मिल गया कि यही खजाना है, क्या ये खजाना नहीं है? और वास्तविक खजाना यही है। खजाना किसी टापू पर गड़ा हुआ नहीं है, खजाना वो स्थूल नहीं है। और जब भगवान धरा पर आते हैं, काल कंटक दूर, वो कौन सा खजाना देता है? अदृश्य खजाना देता है, इनविजिबल ट्रेजर देता है, ऐसा खजाना देता है जिससे आत्मा भरपूर हो जाए। क्योंकि अब तक के जो खजाने थे उन्होंने क्या कर दिया? बेचैन कर दिया, दुखी कर दिया। और वो जब चला गया तो आत्मा और ज्यादा दुखी हुई। पर अब जब भगवान आए हैं, भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, तो वो जो खजाना देता है वो बड़ा ही सूक्ष्म है और आत्मा की प्यास बुझाने वाला है। जन जन आत्मा जो रिक्त हो गई थी, खाली हो गई थी, उसको भरने वाला है। आज सुख की अव्यक्त वाणी, बाबा ने कहा ये खजाना कैसा है? भरपूर। ये खजाना कैसा है? बेहद का। ये खजाना कैसा है? कैसा है? इसको ना चाबी है ना ताला है, अखूट है, अखंड है। जितना चाहो उतना ले सकते हो। परंतु भगवान को भी आश्चर्य है और हंसी भी आती है और साक्षी होकर देखता भी है। क्यों? थोड़े में खुश है। बाबा कहते हैं लोभी भव। अलौकिक लोभ होना चाहिए। जितना चाहो ले लो। इतना सब देने के बाद भी क्यों कम लेते हैं? क्योंकि भक्ति के संस्कार अभी तक साथ साथ चल रहे हैं। ज्ञानियों की सभा में भक्त छिपे बैठे हैं। सुबह की मुरली क्लास के शिविर में छिपे हुए भक्त होते हैं जो छुप छुप के शिव बाबा से प्रार्थना करते हैं। हमारे पति का ताला खोल दो बुद्धि का, बच्चे को ज्ञान में ला लो, थोड़े से पैसे दे दो, घुटने का दर्द बाबा कुछ तो करो। गहरे संस्कार है, जाएंगे नहीं जल्दी। तो बाबा ने कहा भक्ति के संस्कार है। भक्त थोड़े में खुश हो जाता है, थोड़े में प्रसन्न हो जाता है, उसे ज्यादा नहीं चाहिए, बड़ा नम्र होता है। तो आज सुबह की व्यक्त वाणी, मुरली है 16 तारीख की, 16 जनवरी 1985 की। कौन किसको देख रहा है? सृष्टि का, सृष्टि एक झाड़ है। सृष्टि की तुलना झाड़ से की गई है। भगवान उदाहरणों में समझाता है। भगवान जब बात करता है तो संसार के वस्तुओं के उदाहरण देता है, क्योंकि वो जो बातें समझाता है वो निराकार है और मनुष्य को निराकार बातें, एब्स्ट्रैक्ट चीजें समझ में नहीं आती है तुरंत। वो संसार के उदाहरण देता है और अपने पॉइंट को उन उदाहरणों के ऊपर खूंटी बनाकर टंगाता है कि ये सृष्टि झाड़ है, एक ये सृष्टि सीढ़ी है जिससे तुम उतरते हो और चढ़ते हो, ये सृष्टि एक चक्र है जो घूमता है, ये सृष्टि एक सागर है, जन्म और मृत्यु का सागर, भव सागर, ये सृष्टि एक रंगमंच है जिसमें तुम आए हो एक्टिंग करने, पार्ट प्ले करने, किरदार अदा करने, ये सृष्टि कर्म भूमि है। कितने उदाहरण दिए। ये सृष्टि मुसाफिर खाना है, ये सृष्टि स्वप्न है। कभी मुरली में बाबा ने कहा था जो कुछ देख रहे हो सब स्वप्न है। ये सृष्टि खेल है, हार और जीत का, दिन और रात का, सुख और दुख का, यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष का जोड़ है। ऐसे 10 प्रकार की तुलनाएं हैं सृष्टि की जो भगवान ने खुद दी है। यह सृष्टि है क्या? और आज की वाणी में बाबा कह रहे हैं यह सृष्टि क्या है? झाड़ है। और इस झाड़ का बीज कौन है? मैं खुद। और यह बीज कैसा है? चैतन्य है। यह बीज कैसा है? अविनाशी है। इस झाड़ में और संसार के झाड़ में क्या अंतर है? जब संसार का कोई झाड़ लगता है तो बीज खत्म हो जाता है, क्योंकि झाड़ जब है तो बीज नहीं, क्योंकि बीज ही झाड़ बन जाता है। यह एक अद्भुत सा वृक्ष है जिसमें वृक्ष भी है, तना भी है, डालियां भी है, पर साथ में चैतन्य बीज भी है, और वो बीज मैं हूं। और तुम क्या हो? हम फाउंडेशन है, तना है। इस वृक्ष के हम फाउंडेशन है। तो मुरली 16 तारीख की है, जनवरी मास की, और सारी मुरली में दो 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 शब्द है। बाबा युगलों से मिल रहे हैं, कुमारों से मिल रहे हैं, चार पार्टियों से मिल रहे हैं। शायद रात भर मुरली चली होगी ओम शांति भवन में। वो दिन कैसे थे और ये दिन कैसे? हमने सुना है कभी अव्यक्त बाप दादा हिस्ट्री हॉल में आए, कुछ माताएं बैठी थी बाबा से मिल रही थी, भाइयों को लगा माताओं को मिलने दे, तब तक हम खाना खा के आते, और भाई खाना खाने चले गए। माताएं भी कब तक मिलेगी? माताओं को लगा बहुत हो गया, हम भी जाते हैं खाना खाने, और माताएं भी चली गई। भगवान बैठा है अकेला, हिस्ट्री हॉल खाली, कोई तो आके मिले। तो वो दिन थे कितने प्यारे, और ये अब दिन है। दूर से अभी तो दूसरे ही दिन है, और तो ऐसी 16 बातें देखेंगे हम, दो 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 सारी मुरली से। सबसे पहला बीज और फाउंडेशन, दो बातें। तो बाबा ने कहा मैं बीज हूं और तुम फाउंडेशन हो। और फाउंडेशन कैसे है? सभी फाउंडेशन आधार मूर्त हो, सभी फाउंडेशन तुम विशेष आत्माएं हो, तुम सार स्वरूप आत्माएं हो, तुम वो आत्माएं हो जिन्होंने सारी शक्तियों को धारण किया है, तुम वो आत्माएं हो जिनका कनेक्शन बीज से है, और तुमने बीज से कनेक्शन के आधार पर सर्व प्राप्तियां की है। ऐसे हम बीज है, यदि हम हिले तो झाड़ हिलेगा। हम उदास, सारा झाड़ उदास। हम दुखी, सारा झाड़ दुखी। हमारे आंखों में आंसू, झाड़ रोएगा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हमारी स्थिति गिरी कि संसार गिरेगा। इतने हम रिस्पॉन्सिबल, इतने हम जिम्मेदार आत्माएं हैं, जवाबदेही हमारी है। हम फाउंडेशन है, बाबा ने कहा तुम पर सब कुछ है, तुमने सारी शक्तियां धारण की है, तुम विशेष आत्माएं हो, तुम सार स्वरूप आत्माएं हो, तुम आधार मूर्त आत्माएं हो, और तुमने भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ा है। क्या हमें ये याद रहता है कि हम फाउंडेशन है? सारा दिन वेस्ट व्यर्थ संकल्पों में, किसी एक घटना की वजह से संसार को बहुत हानि हो गई। अमृत वेला मिस, संसार तुम्हारी सकाश से वंचित रह गया। सारा दिन बाह्य मुक्ता, संसार में बाह्य मुक्ता बढ़ गई। सारा दिन निगेटिविटी, संसार में निगेटिविटी का विस्तार। बाबा ने कहा तुम फाउंडेशन से झाड़ का विस्तार हुआ है। इतनी बातें कही है फाउंडेशन के लिए। क्या ये हमें स्मरण रहता है? यह हम सोच रहे हैं हमें कोई नहीं देखता, यह हम सोच रहे हैं कि जो मन में चल रहा है चलने दो, स्थिति कभी गिर रही है कभी उठ रही है, कभी कुछ तो कभी कुछ। हमारी स्थिति संसार का आधार है। हमारी पवित्रता प्रकृति के लिए खुराक है। हमारे संकल्प सृष्टि का पालन कर रहे हैं, तो यदि ये सृष्टि वृक्ष है तो इस वृक्ष के फाउंडेशन हम हैं। स्वयं को याद दिलाना है, क्योंकि हम ही वो गिनी चुनी आत्माएं हैं कोटों में कोई, जिन्होंने भगवान को जाना और कनेक्शन जोड़ा, संबंध जोड़ा। हमारा तादात्म्य भगवान से है। तो दो बातें याद रखनी है, कौन सी? बीज और फाउंडेशन। तो बीज से हमारा कनेक्शन हो और वो इधर, बीज नीचे, हम बीच में, और ऊपर हमारे ऊपर सारा झाड़। तो फाउंडेशन का ये भी कर्तव्य है कि वो बीज से जुड़ा रहे। जो आत्मा बाप से दूर हो गई वो संसार को कुछ नहीं दे पाएगी, इसके लिए उससे जुड़ा रहना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। दूसरा, भाग्य और भगवान, दो शब्द, भाग्य और भगवान। बाबा ने कहा यह भाग्यवान युग है। बाबा ने कहा है द्वापर से कर्म और भाग्य का संबंध रहा है, और इस समय स्वयं भगवान तुम्हें भाग्य दे रहा है। तो याद रखना है कि कौन भाग्य बांट रहा है, कौन भाग्य दे रहा है, ये दो बातें। और अपने भाग्य का चिंतन करते बैठना है एकांत में, मौन में, कि मुझे बाबा से क्या क्या मिला, पहले क्या जीवन था और अब क्या जीवन है, पहले कहां डूबे थे नरक में और अब कहां पर है, पहले कैसी गंदगी थी, कैसे विकार थे, कैसी छीछी दुनिया में गोते लगा रहे थे, विषय वैतरणी नदी में भगवान ने वहां से निकाला है और इस ब्राह्मण संसार में लाकर रख दिया। कितना बड़ा भाग्य है। अपने भाग्य का ही चिंतन करना, अपने भाग्य को सोचते रहना, क्योंकि भाग्य का नहीं सोचेंगे तो दुख की बातें याद आती रहेगी जो जीवन में हुई है। इसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा, हम रचता है, शक्तिशाली संकल्पों को क्रिएट करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी, मन में लाना पड़ेगा, इस संसार की सबसे अधिक भाग्यशाली आत्मा मैं हूं, स्वयं भगवान मुझे मिला है। कितनी सूक्ष्म ये भी एक साधना है। तो दो बातें याद रखनी है, भाग्य और भगवान। तीसरा, कलम और लकीर। कौन सी कलम दी है भगवान ने? श्रेष्ठ कर्मों की कलम दी है। ऐसी कलम संसार में किसी भी लेखक के पास नहीं है। और इस कलम से हम क्या कर रहे हैं? लकीर, भाग्य की लकीर, जितनी लंबी खींचना चाहो खींच सकते हो, स्पष्ट अविनाशी अखंड लकीर। संसार के किसी ज्योतिषी ने हमको ये नहीं दिया है। जो ज्योतिषियों का ज्योतिष है, स्वयं भृगु ऋषि ने हमको आकर ये दी है कलम। संसार के ज्योतिषियों के पास जाओ तो दुखी कर देते हैं। एक व्यक्ति एक ज्योतिषी के पास गया और कहा मेरा हाथ देकर बताओ। उस ज्योतिषी ने कहा 60 वर्ष तक तुम दुखी रहोगे, 60 वर्ष तक तुम उदास रहोगे, 7 वर्ष तक तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, परिस्थितियां ही परिस्थितियां आती रहेगी। वो दुखी हो गया ज्यादा ही। उसने पूछा उसके बाद क्या, तुमको तब तक आदत पड़ जाएगी, आगे का क्या पूछना है, तब तक क्या होगा, आदत पड़ जाएगी, आगे भी वही चलेगा। भगवान कह रहा है जितनी लंबी लकीर खींचनी चाहो खींच सकते हो। भाग्य की भी तुलना 10 चीजों से की है, जैसे सृष्टि की तुलना कई सारे चीजों से की है। वैसे भगवान ने भाग्य की भी तुलना की है, भाग्य की लकीर, भाग्य की कलम, भाग्य का सितारा, भाग्य का सूर्य, भाग्य का तिलक, भाग्य का सुहाग, भाग्य का चक्र, भाग्य का द्वार। भगवान हर चीज उदाहरण दे दे के समझाता है, हर चीज को उदाहरण दे दे के समझाता है। भाग्य का भंडार आज की मुरली से, और भाग्य का वरदान, हर एब्स्ट्रैक्ट निराकार चीज को वो उदाहरण देता है। तुम्हारे भाग्य का सितारा चमक रहा है, तुम्हारे भाग्य की लकीर बहुत लंबी है, तुम्हारे पास भाग्य को लिखने की कलम है। कैसा अच्छा साहित्यिक है, साहित्य सम्राट है, कवि काव्य है उसकी वाणी में। वो जो बोलता है वो गद्य पद्य, वो कविता है, गीत है, इसलिए उसको मुरली कहा है। मधुर संगीत है उसकी वीणा में। तव कथामृतम तप्त जीवनम, उसकी अमृत है कथा जो तपते हुई रूह को शांत करती है। तो तीसरा कलम और लकीर, श्रेष्ठ कर्म ही कलम है। ये कितनी अद्भुत बात बाबा ने कह दी। एक तरफ कहा भाग्य दिया है, इसका अर्थ ये होता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु दूसरी तरफ वही कह रहा है कि तुम्हारे पास कलम दी है, अर्थात कर्म को भी वो प्रधान मान रहा है। संसार में ये उलझन हमेशा रही है, पुरुषार्थ श्रेष्ठ है या कृपा श्रेष्ठ है भगवान की। अगर भगवान के ही आधार कृपा से सब कुछ होता है तो पुरुषार्थ क्यों करना है। यहां भगवान कह रहा है तुम्हारे पर कृपा ही ये हुई है कि तुमको कलम मिली, ये संसार की गुत्थी उसने सुलझाई है जो आज तक कभी किसी ने नहीं बताई। आधे लोग पक्ष में थे ग्रेस, गॉड्स ग्रेस, दूसरे तरफ लोग पक्ष में थे पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से होगा, बिना उसके कुछ नहीं होगा। दूसरे कहते थे तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, होई सोई जो राम रचि राखा, होगा तो वही जो उसने रचा है, उसने सोचा है, तुम्हारे कुछ करने से थोड़ी ना कुछ होगा। परंतु एक वर्ग था जो उद्यम को श्रेष्ठ मानता था। तो ये लड़ाई हमेशा से रही है, जितनी स्पिरिचुअल बुक्स है अध्यात्म की, उसमें ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है उनके गुरु को या किसी धर्म स्थापक को कि क्या बड़ा है दोनों में से। बाबा कह रहे हैं कि मैं भगवान तुमको भाग्य की कलम ही मैंने दे दी है, और ये कलम है श्रेष्ठ कर्म की, इससे जितनी भाग्य की लकीर खींचना चाहो खींचो। तो श्रेष्ठ कर्म कहां से पता चलेंगे, श्रीमत से। जो कर्म श्रीमत अनुसार है वो श्रेष्ठ कर्म है, जो कर्म श्रीमत अनुसार है, जो कर्म आत्म अभिमानी स्थिति में किए जाए वो श्रेष्ठ कर्म है, जो कर्म परमात्म याद में किए जाए वो श्रेष्ठ कर्म है, जो कर्म निस्वार्थ भाव से किए जाए वो श्रेष्ठ कर्म है, जो कर्म त्रिकालदर्शी स्थिति में किए जाए वो श्रेष्ठ कर्म है, जो कर्म निमित्त भाव से किए जाए वो श्रेष्ठ कर्म है, जो कर्म समर्पण भाव से किए जाए वो श्रेष्ठ कर्म है। कितनी सारी बातें बता दी। तो ये कलम है और कर्म हमारे हाथ में है। कल सुबह उठने के बाद सारे दिन भर मुझे क्या करना है ये मेरा डिसीजन है। दुखी रहूं या सुखी रहूं, अच्छे कर्म करूं या श्रेष्ठ कर्म करूं, टाइम वेस्ट करूं कि समय को सफल करूं पढ़ाई में। कल की मुरली में था ना, याद से कुछ नहीं होगा, केवल पढ़ाई जरूरी है। कभी कुछ तो कभी कुछ, लहरें उसकी चलती है। कभी ज्ञान ही श्रेष्ठ है, कभी योग श्रेष्ठ है, कभी धारणाएं तो कभी सेवा, बहुत सारी बातें वो बताता है। तो तीसरा है कलम और लकीर, चौथा है यथाशक्ति और सर्वशक्ति। जहां से हमने शुरुआत की थी कि उसके खजाने भरपूर है, अदृश्य खजाने हैं, खुले खजाने हैं, पर जितना लेना चाहो ले लो। पवित्रता खजाना है, खुशी खजाना है, श्रेष्ठ कर्म खजाना है, दुआ खजाने हैं, समय खजाना है, संकल्प बोल कर्म खजाने हैं, संतुष्टता खजाने, असंख्य खजाने हैं। हम जब जब इन इन स्थितियों में स्थित है अर्थात खजानों से भरपूर है। जिस दिन ब्रह्मचर्य भंग हुआ समझ लेना कि वो दिन हम लुट गए। बाबा ने कहा ना, माया को दूर कहीं छोड़ के आ जाओ, आज के मूल्य में है। भगाया है कि नहीं भगाया है? जिसको भगाया जाता है उसको दूर छोड़ के, इतना दूर वो संकल्प, वो संस्कार, वो विकार, वो भावना छोड़ के आ जाओ कि वो यहां तक वापस ही ना आए। यथाशक्ति और सर्वशक्ति, जितना चाहे ले लो। अलौकिक लोभी भव, अपने लोभ को बढ़ाओ थोड़ा, सब कुछ ले लेना है, समय अब है लेने का। ये चौथा। पांचवा, लेट और टू लेट, दो बातें। ये मुरली 85 की है, तब बाबा ने कहा लेट हो गया है पर टू लेट नहीं हुआ है। अब क्या कहेंगे? टू लेट हो चुका है, अब दुकान बंद होने का टाइम है। लेट, टू लेट और क्लोज्ड। और जो जो अभी अभी आए हैं उनको तो बहुत बेचैनी होनी चाहिए, हम लेट हो गए। जब दादी जान की 1.5 साल लेट हुई तो तब उनको बेचैनी हुई थी कि मैं लेट हो गई, और हम निश्चिंत बैठे हैं कि ठीक समय पर आए हैं। आध्यात्मिक पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए एक चीज की आवश्यकता है, दैवीय असंतोष, डिवाइन डिस्कंटेंट। उसकी हम बात नहीं कर रहे, संतुष्ट रहना, संतुष्ट मणि बनना अलग, परंतु पुरुषार्थ में क्या चाहिए? असंतोष, और आगे और आगे और आगे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये केवल मील के पत्थर थे, मंजिल तो बहुत आगे है। मील के पत्थर कोई मंजिल नहीं समझ लेना, गंतव्य बहुत आगे है। थोड़े बहुत अनुभव क्या हो गया, थोड़ा बहुत साक्षात्कार क्या हो गया, यहाँ लाइट वहां लाइट, यहाँ ब्रह्मा बाबा वहां शिव बाबा, यहाँ बाबा की मदद, यहाँ प्रभु प्रेम का अनुभव, यहाँ आंखों से आंसू और अशरीरीपन, और ये परिवार मेरा है, और ये मधुबन मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, आहा मेरा अलौकिक जीवन, ये सब ठीक है, पर ये मील के पत्थर मात्र है, मंजिल तो बहुत आगे है। मुरली सुन ली, क्लास सुन लिया, हाँ बहुत अच्छा, क्लास करा दिया, कोर्स करा दिया, प्रोग्राम कर लिया, हजारों लोगों को संदेश दे दिए, हजारों सेंटर्स खोल दिए, हजारों कन्याएं तैयार कर ली और कुमार तैयार कर लिए, सब मील के पत्थर मात्र है, मंजिल बहुत आगे है। और आगे और आगे और आगे और आगे, दैवी असंतोष, द डिवाइन डिस्कंटेंट। आग हो आग हमेशा, नींद फिट जाए, लेट और टू लेट। उसके बाद में अगली दो बातें, बाप के दो स्वरूप, एक बाप, दूसरा सद्गुरु। बाप क्या देता है? वर्षा। और सद्गुरु क्या देता है? वरदान। यहां फिर से बाबा ने वो बात कही कि क्यों कम लेते हो जबकि वो सब कुछ दे रहा है, ले लो उसे। देखना कि उसने अपना वरदानी हाथ सिर पे रखा है और सब कुछ वो लुटा रहा है। जिस विकार से संघर्ष हो रहा है, जिस संस्कार को छोड़ने की चेष्टा और पुरुषार्थ हो रहा है, अमृत वेला उसने सिर पर हाथ रख दिया और कह दिया कि आज से इस विकार से तुम हमेशा के लिए मुक्त हो, इसका अभ्यास करना है, तो वो छूट जाएगा। रोने की बीमारी है तो रोना प्रूफ भव का वरदान उससे लेना है रोज। जो भी सूक्ष्म है और जो हमारे अतिरिक्त तो किसी को भी नहीं पता, पर वो हमारे अंदर खोट है। और उसे भी वो पता है, वही मार्ग दिखाएगा, वही मार्ग प्रशस्त करेगा। तो उसका बाप का रूप और दूसरा सद्गुरु का रूप। रामायण में दिखाया है दशरथ आईने के सामने देखते बाल सफेद हो रहे, तब ख्याल आता है पर मेरे तो कोई संतान नहीं, राज्य कैसे चलेगा, बूढ़ा हो रहा हूं। गुरु के पास जाते, ये नहीं कहते पुत्र दो, वो कहते ऐसा कुछ मार्ग बताओ जाई विधि हो, नात हित मोरा, ऐसा कुछ कहो जिससे मेरा कल्याण हो। बाबा से कुछ मांगना नहीं, कुछ भी नहीं मांगो, उससे ये कहो ऐसा कुछ कह दो, ऐसी कोई टचिंग दे दो कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए, बस इतना कहना है। ये दो वो दो, ऐसा दो वैसा दो, यहां जाऊं कि नहीं जाऊं, ये सब प्रश्न नहीं, ऐसी कुछ टचिंग कराओ जय विधि हो ई नात हित मोरा, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। उसे हमारा कल्याण हम ज्यादा जानते हैं या वो ज्यादा जानता है? हम सोचते यहां जाऊं तो मेरा कल्याण हो, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं और वो हमारा परम कल्याण करना चाहता है, यही अंतर है। तो दो बातें, वरदान और वर्षा। उसके बाद में अगली पॉइंट सातवीं, और बाप के दो रूप, एक साथी एक साक्षी। बाबा ने कहा अब मैं तुम्हारा साथी हूं, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं, पर कुछ समय के बाद मैं साक्षी बन जाऊंगा, फिर तुम यथाशक्ति लो या सर्वशक्ति से लो, मैं उसमें इंटरफियर नहीं करूंगा। एक समय आ जाएगा जब बाप संपूर्ण साक्षी होगा, कुछ नहीं करेगा तब। एक वाक्य मुरली में आया है कि सृष्टि परिवर्तन का समय और परमात्मा प्राप्तियों के समय को मिला नहीं दो, बड़ा गुह्य वाक्य मुरली में आया है, सुनिए ना सबने मुरली सुबह। अभी प्राप्ति का समय है, फिर पश्चाताप का समय होगा, हमने किया क्यों नहीं, पश्चाताप का समय। मधुबन गए थे, इतना बड़ा संगठन मिला था, एक अवसर फिर नियति ने दिया था अपनी सारी गलतियों को ठीक करने का, फिर भी नहीं की, फिर भी वही करते रहे मधुबन से जाने के बाद भी। प्री मधुबन एंड पोस्ट मधुबन जीवन सेम था, प्री भट्टी पोस्ट भट्टी, भट्टी में आने से पहले और भट्टी में जाने के बाद गलतियां वही चालू है। तब समय होगा पश्चाताप का, इसके लिए अपने आप को जगाना है। कल का वरदान था वैराग वृत्ति को जगाओ, वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, जहां जहां चिपके हुए हैं, अटैच्ड है, उन सब से अपने आप को कट कर देना है। उसके बाद में आठवा, मजबूत और मजबूर। बाबा क्या करना चाहते हैं? हमें मजबूत बनाना चाहते हैं, परंतु आदत से हम मजबूर हैं। आदत बहुत लंबी है, अगर वो मजबूत बनाना चाहता है तो हम भी मजबूत बने। किसी आदत में इतना सामर्थ्य नहीं कि परमात्मा शक्ति को ललकारे, चाहे आदत कितनी भी पुरानी हो। इस यज्ञ में ऐसे कितने ही लोग हैं पहले जिनको इतने सारे व्यसन थे, डूबे हुए थे व्यसन में, जैसे ही ज्ञान में आए जिस दिन निश्चय हुआ धक से छोड़ दिया। और संसार के लोग कितने सालों साल कोशिश करते रहते, बीड़ी सिगरेट तंबाकू क्या क्या खाते हैं, छोड़ने की रिहैब सेंटर में पुनर्वसन केंद्र में 6-6 महीने रुकते हैं, फिर भी नहीं छूटता। इस प्रभु प्रेम में ऐसी शक्ति है कि सब कुछ कर सकता है। इसके लिए जब मधुबन में आए हैं तो यहां से ऐसा शक्तिशाली संकल्प करके जाना है। कोई भी आदत हमें विवश न करे, क्योंकि आदत बहुत गहरी होती है, सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक काम करती है। पहले तो उस आदत को समझ लेना, ये आदत है, आइडेंटिफाई, एक्सेप्ट की है। वो आदत कुछ भी हो सकती है, इंटरनेट से लेके कोई भी डिजिटल एडिक्शन हो सकता है। वर्तमान समय सबसे बड़े यही एडिक्शन है, हर एक मोबाइल में डूबा हुआ है, लंबी लंबी बातें चालू है, कोई इस अंधेरे में, कोई उस कोने में, क्या बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत पर्सनल व्यर्थ की, फैमिलियरिटी की, और धीरे धीरे विकार की। इसी में डूबा है संसार। तो मजबूत, और दूसरा बताया मजबूर, मजबूर नहीं होना है, मजबूत बनना है, ये दो बातें। उसके बाद में नौवी, गे गे और के दो बातें। अपने आप से पूछो, आज सारे दिन भर मैंने कौन सा गीत गाया, के वाला गाया या गे वाला गाया, ये क्यों, ये क्या, ये कैसा, इसने ऐसा क्यों कहा, ये लोग ऐसा क्यों करते, मधुबन में भी ऐसा करते, ये इतने पुराना है, ये भी ऐसा करता है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तलवार लेकर घूम रहे। बाबा ने कहा ये के गीत बंद करो, और गे कल से कर लेंगे, देखेंगे गे के गीत। बहानों का जमाना है, बहानों की दुनिया में रहना, ये नहीं कर पाए क्योंकि ये कारण था। किसी एक क्लास में दादी जानकी ने कहा, एक है झूठ बोलना, दूसरा है बहाना बनाना। बहाना बनाना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। कितनी बड़ी बात बोल दी। एक है सीधा सीधा सरासर झूठ, एक है बहाना। क्यों अमृत वेला उठ नहीं पाए, रेत लेट सोए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, फला हुआ था, ढला हुआ था। तो गे और कौन सा गीत गाना है, पाना था सो पा लिया। ये बहुत अच्छा सेल्फ चेकिंग का प्रश्न है। रोज रात में सोने से पहले बाबा के सामने बैठकर ये कहना, बाबा आज मैंने सारे दिन भर कौन सा गीत गाया, कंप्लेन वाला गीत गाया, दुख वाला गीत गाया, पश्चाताप वाला गीत गाया, आज नहीं करना चाहिए था फिर भी हो गया, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे फिर भी कर दिया, संकल्प किया था नहीं करेंगे, वहां नहीं जाएंगे, वो नहीं देखेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फिर भी कर दिया, पश्चाताप का गीत गाया रात में, दिन भर कौन सा गीत गाया, या खुशी का गीत गाया। तो नौवीं पॉइंट है गे और के, गे और के की भाषा से परे। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा, देखना है भगवान मेरे सामने बैठा है, स्थान है मधुबन, इंद्रप्रस्थ स्थान है, संसार का यज्ञ कुंड स्थान है, तपस्या भूमि स्थान है, ब्रह्मा की कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि, मधुर भूमि, मनोरंजन भूमि स्थान है, संसार का सबसे बड़ा तीर्थ शीश महल, और वहां मैं बैठा हूं, और मेरे सामने भगवान है, आज मैंने सारे दिन भर कौन सा गीत गाया। यहां मुरलीपुरी होती है, उसके बाद कुमारों से मुलाकात। दो बातें, जिस्मानी शक्तिशाली और रूहानी शक्तिशाली। कुमार अर्थात रूहानी शक्तिशाली, संसार में कुमार है जिनके पास जिस्मानी शक्ति है, परंतु वो दुख में है, वो भटक रहे हैं और धोखे में है। तुम इन सभी बातों से छूट गए हो, इसलिए अपने हमजिन को जगाओ। बाइबल में एक जगह लिखा है, जीसस क्राइस्ट कहता है, ही हु इज मैरिड थिंक्स ऑफ हिज वाइफ एंड हाउ ही विल प्लीज हर, ही हु इज अनमैरिड थिंक्स ऑफ द लॉर्ड हाउ ही विल प्लीज हिम। जिसने शादी की है वो ये सोचता है अपने पत्नी को कैसे खुश करूं, और जिसने शादी नहीं की है वो ये सोचता है भगवान को कैसे खुश करूं। इसके लिए चतुर्भुज बनने का संकल्प, कुमार है यहां बैठे, नहीं करना है। कुमार शक्तिशाली है, जयपुर में गोविंद जी का मंदिर था किसी जमाने में। वहां के राजा ने वहां के पुजारियों को अपने महल में बुलाया, आओ। वो सभी पुजारी ब्रह्मचारी थे, उन्होंने सब आने से सीधा इनकार कर दिया, हम नहीं आएंगे। राजा को जब पता चला, अच्छा पुजारियों की ये हिम्मत, मंत्री से कहा सभी पुजारियों की शादी कर दो। अगली बार न्योता भेजा है, सारे पुजारी आ जाए, आ गए, कुछ निर्माल्य लेकर आए, कुछ कुछ लेकर आए, कुछ कुछ लेकर आए, आपने बुलाया और हम ना आए, ऐसा हो सकता है? सारी पावर चली गई। आई हेट मैरिजेस, विवेकानंद ने कभी कहा, घृणा है मुझे, बंधन है, एक प्रिजन है, प्रिजन जेल जिसमें व्यक्ति फंसता है और जीवन भर फंसा रहता है। इसके लिए जो उससे बाहर है वो बाहर ही रहे। तो कुमारों से बाबा कह रहे हैं, कुमार अर्थात रूहानी शक्तिशाली, सब दुख से छूट गए, सब भटकने से छूट गए, धोखे से छूट गए, अब अपने हमजींस को जगाओ। तो दो बातें, जिस्मानी शक्तिशाली और रूहानी शक्तिशाली। अगली पॉइंट इसी को कुमारों से ही मुलाकात में, सेवा और निमित्त भाव। सेवा करो परंतु अहंकार ना हो, मैं करता हूं। सेवा बहुत करो पर जिस सेवा में अहंकार आ गया वो सेवा नष्ट, उसका सारा पुण्य फल नष्ट। सेवाएं भगवान ने हमें दी है ताकि हम अपना भाग्य बनाएं। वो चाहता तो हमसे योग्य संसार में हजार लोग हैं, उनको भी दे सकता था। इसके लिए हमने किए और हमारे सिवा ये नहीं हो सकता, ये अहंकार, ये घमंड, ये गुरूर, कैसा ये गुमान। हमारा भाग्य है जो हमें ये करने को दिया गया, चाहे सेवा केंद्र में हो, चाहे मधुबन में हो, चाहे संसार में कहीं पर भी हो, जब भी सेवाएं मिले हाँ जी, और विनम्रता से स्वीकार करना। तो ये दो बातें। उसके बाद में 12वीं पॉइंट, युगलों से मुलाकात, अधीन और अधिकारी, दो बातें। बाबा ने कहा इन दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर है, दिन और रात का। किसी भी बात पर अधीन नहीं, किसी पर भी अधीन नहीं, वस्तु व्यक्ति वैभव साधन, अधीनता डिपेंडेंसी, चार पांच प्रकार की डिपेंडेंसी है। एक तो शारीरिक, जितना हो सके अपने शरीर को स्वस्थ रखने का पुरुषार्थ करना है, ऐसा ना हो किसी को इतना हम कमजोर हो जाए कि किसी का सहारा लेना पड़े। जो ले रहे हैं उनकी दूसरी बात है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, परंतु हम अपना इतना शरीर का, हेल्थ का, स्वास्थ्य का देख रेख करें कि पकड़ पकड़ के ना चलना पड़े। वो भी एक अधीनता है, शारीरिक अधीनता। दूसरी है भावनात्मक अधीनता। किसी व्यक्ति में इतना अटैच हो गया इमोशन से, बहुत इमोशंस, ये तो सबसे कड़ी अधीनता है। दिन रात मैसेजेस, कॉल्स, बातें, फैमिलियरिटी, शेयरिंग, जुड़े अधीनता है, इमोशनल बॉन्डेज है, स्लेवरी है एक, इससे भी स्वयं को मुक्त रखना है। तीसरा है बौद्धिक अधीनता, इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी। कुछ काम हमको दिया बुद्धि वाला, हम किसी और पर डिपेंडेंट है, अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहे, अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न नहीं कर रहे। भगवान कह रहा है चिंतन करो, चिंतन करो, मनन करो, ज्ञान की गहराई में जाओ। हमसे किसी ने कहा ये लिखना है, वो कहते हैं हमसे नहीं होगा, हमने कभी किया नहीं ये काम, ये बुद्धि का काम है। ये भी तो अधीनता है। उसके बाद है आर्थिक अधीनता, कुमारों के लिए कभी भी किसी के सामने पैसों के लिए, भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना, खुद के पैरों पर खुद खड़े रहना, खुद ही भोजन बनाना, कठिन से कठिन परिस्थितियों में अकेला, आर्थिक अधीनता ना हो। उसके बाद है सामाजिक अधीनता और फिर है आध्यात्मिक अधीनता। पुरुषार्थ हम तब करेंगे जब मधुबन जाएंगे, पुरुषार्थ हम तब करेंगे जब कोई क्लास सुनेंगे, पुरुषार्थ हम तब करेंगे जबकि भट्टी होगी, ये भी अधीनता है। इसकी क्लास उसकी क्लास, ये क्लास वो क्लास, क्लासेस के अंबार लगे हैं, क्लास सुन रहे हैं, किसकी उसकी, क्या कर रहे क्लास, अरे पर भगवान कहाँ है, उसी में लगे हैं दिन रात। वो भी बंधन ना बने, कोई व्यक्ति की वजह से हम पुरुषार्थ कर रहे ये भी ना हो, हमारा पुरुषार्थ निराधार हो। तो अधीन बाबा ने कहा अधिकारी बनो, क्या करो अधिकारी बनो, अधिकारी बनना है। और यहां माया को भगाने की बात, इतना दूर छोड़ के आए कि वापस ना आए, वो गोल गोल रास्ते से घुमा के उसको दूर छोड़ के आ जाओ ताकि वापस ना आए वो संस्कार, नहीं तो संस्कार रिपीट आते रहता है, आते रहता है, कहां से आता है पता नहीं चलता है। इतना दूर छोड़ के आ जाओ उसको, इसको देखना है कि हम छोड़ के आ रहे वापस ना आए। तो ये थी अधीन और अधिकारी। उसके बाद में चार पार्टियां हैं। पहली पार्टी अलौकिक बाप और अलौकिक वर्षा। बाबा ने कहा जब तुमको अलौकिक बाप मिला, अलौकिक वर्षा मिला, अलौकिक जीवन, अलौकिक जन्म मिला, तो अभी तुम संगम युग में थे पहले हो, अभी पहले कलयुग में थे, जीवन बदल गया है, जन्म बदल गया है, पुराने जन्म की बातें क्यों याद करते हो, वो शूद्र जन्म था, हमारा नया जन्म हुआ है, द्विज है हम, ट्वाइस बॉर्न। बॉर्डर क्रॉस की तो दुश्मन के हवाले हो जाएंगे, इसके लिए संसार के लोग जो कर रहे, संसार के जो मनोरंजन है, संसार की जो फिल्में हैं, संसार के जो नाटक है और संसार की जो किताबें हैं, अश्लीलता से भरा हुआ संसार, विकारों से भरा हुआ संसार, हम संगम युगी है, कलयुगी में नहीं जाना है, बॉर्डर क्रॉस की तो हमला हो जाएगा, हवाले हो जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, अपने आप को निरंतर याद दिलाते रहना, स्मृति दिलाते रहना, ये नया जन्म है। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है, छोटा सा बच्चा है चंद्रगुप्त, अभी अभी चाणक्य निकला है, घोर अपमान हुआ है धनानंद की सभा में, संदेश देने आया था कि अलक्षेंद्र सिकंदर आ रहा है, भारत कुछ करो, मगध सबसे बड़ा जनपद है, उसे धक्के निकालकर बाहर निकाल दिया जाता है। खुली शिखा, और देखता है एक बालक खेल रहा है, पर उसमें ऐसी अलौकिक प्रतिभा है, वहीं पर उसको घोषित कर देता है, अखंड भारत का सम्राट होगा तू चंद्रगुप्त, आज तेरा नया जन्म हुआ। वैसे भगवान ने भी आते ही तिलक दे दिया, द्विज भव, मरजीवा जन्म है, पुराने जीवन की बातें क्यों याद आती है, वो हमारा नहीं है। तो तेरहवा अलौकिक बाप और अलौकिक वर्षा। उसके बाद में चौदह डबल लाइट और उड़ती कला, दो बातें, सेकंड पार्टी। डबल लाइट अर्थात उड़ती कला, और उड़ती कला का क्या परिभाषा दी है, उड़ती कला की देहभान से परे, धरनी ना आकर्षित करे, धरनी ना खींचे, निश्चित विजयी, निश्चय बुद्धि, यह है उड़ती कला। उड़ते रहना है ऊपर ऊपर ऊपर, शरीर के भान में आना, शरीर के आकर्षण में आना, शरीर को देखना, शरीर से खेलना, संकल्प में शरीर से खेलना, कल्पना में शरीर से खेलना, कल्पना में शरीर का भोग लेना, ये भी वासना का सूक्ष्म स्वरूप है, सेंशुअल फैंटेसीज। तो डबल लाइट और उड़ती कला। उसके बाद में पंद्रहवा, दो बातें, पार्टी नंबर तीन, सहज योगी और निरंतर योगी। बाबा ने कहा सहज करो, जो भी करना है तो निरंतर होगा, जबरदस्ती किया तो निरंतर नहीं चलता है। कोई भी चीज जबरदस्ती लंबा समय तक नहीं चलती है, सहज हो जाए, और सहज होने की विधि है बाप से सारे संबंध जोड़ दो। सहज होने की विधि है एक की याद रहे, वो एक ही संसार है और कोई संसार ही नहीं है। किन में फंसे हैं? ये हमारे लोग हैं ही नहीं, सबने धोखा दिया है कभी ना कभी। डिसेप्टिव है संसार की आत्मा, है इल्यूजरी है, काल्पनिक है, भ्रामिक, भ्रम पैदा करने वाली है। इसके लिए एक से संबंध, एक की याद, एक ही सर्वस्व है, एक ही संसार है, तो सब कुछ सहज होगा। लास्ट पॉइंट, पार्टी नंबर 4, दो बातें फिर से, बाप और वर्षा। परंतु ये दूसरे अर्थों में कहा है, बाप को याद करो तो शक्तिशाली बनेंगे और वर्षे को याद करो तो खुशी रहेगी, क्योंकि बिना खुशी के जीवन कैसा है? मृत्यु समान। और यदि जीवन में अगर दुख है तो जरूर किसी ना किसी श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। कुछ दिनों पहले मुरली में था, ये शरीर राख हो जाएगी, ये शरीर लोथ है, ये शरीर मिट्टी है, अगर शरीर भान में रहोगे तो रोना पड़ेगा, देही अभिमानी रहोगे और आत्मा देखोगे तो रोने से मुक्त होंगे। रोने का कारण ही है शरीर और शरीर का चिंतन। तो दुख यदि है जीवन में तो जरूर कोई ना कोई अंदर श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसी ये कितनी बातें हुई, 16। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, बीज और फाउंडेशन, दूसरा भाग्य और भगवान, तीसरा कलम और लकीर, चौथा यथाशक्ति और सर्वशक्ति, पांचवा लेट और टू लेट, छठवा बाप के दो स्वरूप, बाप और सद्गुरु, अगला बाप के दो स्वरूप, साथी अब है बाद में साक्षी हो जाएगा, आठवा मजबूत और मजबूर, नौवा गे 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 और के गीत, दसवा जिस्मानी शक्तिशाली और रूहानी शक्तिशाली, ग्यारहवा सेवा और निमित्त भाव, बारहवा अधीन और अधिकारी। कोई भी अधीनता हमें स्वीकार नहीं है, अपने डायरी पर लिख के रखना है, मुझे किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं है, आई रिजेक्ट ऑल डिपेंडेंसीज। कोई भी हो, किसी की भी अधीनता नहीं, किसी के पैसे नहीं चाहिए, किसी का कुछ नहीं चाहिए, जो मिलेगा भगवान से मिलेगा, उससे हम लेंगे और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे कभी किसी भी बात के लिए। ना प्यार चाहिए, ना केयर चाहिए, ना अटेंशन चाहिए, ना प्रशंसा चाहिए, ना स्तुति चाहिए, ना हमदर्दी चाहिए। तुम्हारी बीमार है, बीमार रहेंगे, तुम आकर कुछ कहो और हमें खुशी हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान देखभाल करेगा। और बाबा को याद जरूरी नहीं है उसी प्रोटोकॉल से याद करना है, मैं आत्मा हूं और फिर परमधाम गई और सूक्ष्म वतन में गई। बहुत थक जाओ तो जाकर बाबा की गोद में लेट जाओ और कहो हाथ रख दो, बस यही योग है आज का। ये भी तो योग है कि हमेशा एक ही प्रोटोकॉल से जाओगे, नहीं होगा। कभी कभी कुछ भी नहीं करना है, जाकर गोदी में लेटे और उसने यहां हाथ रख दिया, बस यही योग। कहां थे? अधीनता मुझे स्वीकार नहीं है। अगला बाप, अलौकिक बाप, अलौकिक वर्षा। तो इसी की खुशी में रहना है, इसी की याद में रहना है, इसी प्राप्ति के नशे में रहना है कि हमें अलौकिक बाप, वो जन्म अब आ रहा नहीं है, अब वो शूद्र जन्म था, पिछला जन्म था, ये नया जन्म है, नवजन्म। उसके बाद डबल लाइट और उड़ती कला, निरंतर उड़ते रहना है शरीर के ऊपर, शरीर की आसक्तियों के ऊपर, वासनाओं के ऊपर, शरीर को जीतना है, इन कर्मेंद्रियों को जीतना है। एक एक कर्मेंद्रिया बाबा ने कहा है कभी छीछी है, गंदगी है, दुर्गंध है उसमें। अगला सहज योगी, जो भी करो उसको सहज बना दो। कैसे करूं जो सहज बने? क्योंकि जो सहज रहेगा वही लंबा समय चलेगा, जो सहज नहीं वो लंबा समय नहीं चल सकता, चाहे उठना हो, चाहे भोजन का हो, या कुछ भी। उसके बाद बाप और वर्षा, बाप को याद करो तो शक्ति और वर्षे को याद करो तो खुशी। ऐसे कैसे, ऐसे इस सृष्टि के फाउंडेशन आत्माओं को, ऐसे बाप से सारी शक्ति अपने अंदर धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे सार स्वरूप आत्माओं को, ऐसे विशेष आत्माओं को, ऐसे बोलते जाओ, ऐसे ऐसे महानात्मा आज की मुरली का बताओ, ऐसे मजबूत आत्माओं को मजबूर नहीं, ऐसे पा लिया सब कुछ और कुछ पाना बाकी नहीं है, गीत गाने वाली आत्माओं को ऐसे गे गे और के की भाषा, गीत गाने वाले नहीं आत्माओं को ऐसे, अधिकारी आत्माओं को ऐसे, डबल लाइट आत्माओं को ऐसी, उड़ती कला वाली आत्माओं को ऐसे, सहज योगी आत्माओं को, निरंतर योगी आत्माओं को, स्वतः योगी आत्माओं को ऐसे, शक्तिशाली आत्माओं को ऐसे, बाप समान आत्माओं को ऐसे, बाप को साथी बनाने वाली आत्माओं को ऐसे, भाग्यवान आत्माओं को, भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, जो आपसे सारा खजाना हप करने वाली आत्माओं को, एक भी नहीं, श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम से अपनी तकदीर की लकीर खींचने वाली आत्माओं को, ऐसी बहुत सारी डैश 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 आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।